Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nahmeduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'du. Fa'uzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdatan min lisani yafqahu qawli. Synopsis of Quran. Quran ki jhalkiyan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. आज इस सीरीज में से हम करेंगे अमन खलका, यानी पारा नंबर 20. पारा नंबर 20 की झलकियां देखते हैं. इस पारे का पहला हिस्सा, इसमें पूरी सूरत नमल है, जिसके अंदर दो बड़े बुनियादी मजामीन, तौहीद यानी वननेस ऑफ अल्लाह सुभान व तआला और कयामत. तौहीद के अंदर फिर मज़ीद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे इंसान अल्लाह ताला के बारे में बहुत ज़्यादा जानने लग जाता है, और इसके बाद फिर क़यामत में भी कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं. इसके बाद पारे का जो दूसरा हिस्सा है, ये सूरत कसस पर मुहीत है. अब आप देख रहे हैं कि हर एक हिस्से में एक एक पूरी सूरत है, जिसमें मूसा और फिरौन का किस्सा तफसील से है, जिसको आप कह सकते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत स्टेप बाय स्टेप. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी हम पढ़ते हैं, फिर मदनी ज़िंदगी पढ़ते हैं ना, तो इसी तरह इसमें हज़रत मूसा की ज़िंदगी के दो मुख्तलिफ रूप दिखतेंगे. और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का किस्सा. फिरौन सियासी रहनुमा के तौर पर एक रोल मॉडल था, और क़ारून दौलत का, यानी जैसे हर मुआशरे में कुछ लोग मनी के साथ जुड़े होते हैं, तो क़ारून का किस्सा कुछ इसी किस्म का था. फिर इसी के बाद पारे का जो तीसरा हिस्सा है, यहाँ सूरत अनकबूत की इब्तदाई आयात हैं, और सूरत अनकबूत का तो दूसरा नाम क्या है, दुखी लोगों की सूरत. मक्का में मुसलमानों पे जो जुल्म सितम थे, जो दुख थे, जो तकलीफ़ें थी, उन तकलीफ़ों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया कि तुम्हारे ऊपर जो मुश्किल आई है तो ये कोई नई नहीं है, ये हर दौर के लोगों पर आई थी. और इसी तरह से फिर इसके बाद सूरत का जो अनकबूत का हिस्सा, उसमें भी तीन ही चीज़ें हैं, जिसमें एक तौहीद है, फिर रिसालत है, और फिर क़यामत है. आप कह सकते हैं कि पूरा कुरान आपको पढ़ने से, माशाल्लाह आप 20 पारे पे पहुंच गए, आपको क्या समझ आया? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है कुरान में? तौहीद, क़यामत, रिसालत, ये थ्री पिलर्स हैं. इन्हीं को आप कह सकते हैं कि कब्र के तीन सवाल हैं. यही थ्री फंडामेंटल्स ऑफ द इस्लाम है, असूल सलासा भी कहते हैं. इसके बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल आपको दिखते हैं. तो आपको मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा दुआ करनी है अपने बारे में ये भी, कि अल्लाह तू हमें बेहतरीन तरीके से इस तौहीद पे लगा दे. आप याद रखिए, एक जुमला लिखिए, और वो जुमला क्या है कि अकीदा दुरुस्त हुआ तो छोटे छोटे अमल भी काम आ जाएंगे और निजात हो जाएगी, लेकिन अगर अकीदा दुरुस्त ना हुआ तो बड़े बड़े आमाल भी ज़ाया हो जाएंगे. अल्लाह ताला हमारे आमाल के ज़ाया होने से, बातिल होने से हमें बचा दे. और इसी तरह से आज लोगों को अकीदे के लफ्ज़ का मानी तक नहीं पता. फिक क्या होती है, अकीदा क्या होता है, लोग नहीं जानते. और बस दफ़ा इतनी बहसें करते, इतने छोटे छोटे मामलात में झगड़ा पैदा कर देते. तो आज से ही नियत कीजिए, आज एक कदम उठाएंगे, अल्लाह कल दूसरा उठाना आसान करेगा, कि अब मैंने तौहीद पे पूरा ज़ोर देना है. और कुरान का तर्जुमा आपकी तौहीद को बेहतरीन तरीके से पुख्ता करने के लिए काफ़ी होता है. ज़रूरत इस बात की है कि हम पूरे दिल और दिलो दिमाग की गहराइयों के साथ दुआ करके समझ के पढ़ें. अल्लाह ताला की हस्ती इतनी बड़ी हस्ती है ना, कि ये एकदम नहीं समाती. इसके लिए कदम कदम एक एक चीज़ लेकर जाएंगे. अल्लाह को एक मानना क्या मुश्किल था, मक्का वाले भी मान जाते, लेकिन जब लफ्ज़ तौहीद आता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि अल्लाह की अजमत दिल पे हो, अल्लाह का जलाल हो, अल्लाह का अला कुल्ली शैन कदीर होना दिल पे हो. फिर उसके बाद कहाँ मायूसियाँ रहती हैं, फिर दिलो दिमाग के अंदर कभी भी इस तरह के कोई शकूक व शुभात रह ही नहीं सकते, जो कि आज हमें बहुत सारे अपने और अपनी नस्लों के जहनों में दिखते हैं. हमारे सलफ़ सालेहीन, और ख़ास तौर पे आप देखिए अम्बिया कराम, और फिर कुरान पाक में सहाबे कराम के किस्से देख लीजिए, सब का जो सबसे खूबसूरत अमल वो तौहीद था. हजरत इब्राहिम का किस्सा आपने अभी तक जितना पढ़ा है वो क्या था कि अल्लाह को एक मान गए थे, उसके बाद उनको दुनिया में कोई भी चीज़ उस रास्ते से या उस बात से पीछे नहीं कर सकी जो कि अल्लाह ताला चाहते थे। हम आज क्या करते हैं, आमाल बहुत करते हैं। आज 15 शाबान है, जाग लो, ये जागने की रात है, ये कर लो वो कर लो, ये सारी इबादत अपनी जगह। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी क्योंकि अब बात हो रही है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम समझें। देखिए, शादी में निकाह सबसे पहले होता है ना, निकाह के बाद है ना कि बीवी मियाँ के लिए चाय बनाए कि ना बनाए, उसके कपड़े इसलिए करे ना करे, वो तो बाद की बातें हैं। कोई दिल से माने ही ना, वो निकाह के बोल ही ना बांधे, या वो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर बाकी अगला सवाल का है। अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल नहीं है, लेकिन हमारी अपनी समझ बूझ के लिए मिसाल है। तो उनके लिए ये चीज़ मौजूद है कि जब हम अल्लाह को एक मान जाते हैं ना, फिर ये डूज एंड डोंट्स उसके बाद आते। हम फिर उसके बाद देख सकते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने क्या करने को कहा है क्या नहीं। और यही वजह है कि लोगों का दिल नहीं कर रहा होता अल्लाह की बात मानने को, सच्ची बता रही हूँ आपको, क्योंकि अल्लाह को नहीं पता वो कौन है। एक बीवी अपने शौहर की इज्जत ना करे तो सच बता उसकी बात मानेगी? औलादों के दिल में माँ बाप के लिए शुक्रगुजारी के जज्बे ना हो तो क्या औलाद अपने माँ बाप की बात मानेगी? नहीं मानेगी। तो लिहाजा ज़रूरत है, और इसके लिए कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फारसी नहीं है इसमें कि आप ये पढ़ें और वो पढ़ें और ये ना पढ़ें और वो ना पढ़ें। इसके लिए बस बड़े प्यार से, बड़े अच्छे तरीके और सलीके के साथ कुरान का तर्जुमा भी काफ़ी है। तो लिहाजा सूरत अनकबूत में तौहीद, रिसालत और क़यामत है। आइए देखते हैं कि सूरत नमल में क्या है, शुरू की आयात में, और इन्हीं आयात में अगर आप देख लें तो आपको बिल्कुल शुरू में ही तख्लीक और तौहीद का जिक्र मिलेगा। फिर कौन है जो बेबस की दुआ को सुनता है, अम्मे युजीबुल मुस्तर इज़ा दाहू। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र है, अल्लाह सुबहाना ताला ने हज़रत मूसा को नबूवत से नवाजा, और फिर मूसा को फिरौन के घर में पलवाया, क्योंकि अल्लाह ताला किसी फिरौन से, ना कल के फिरौन से ना आज के फिरौन से डरता नहीं है। फिर इसके बाद जालिम कभी फलाह नहीं पाते, और फिर फिरौन के घमंड का इबरतनाक अंजाम भी है, और हर चीज़ हलाक होने वाली है। आयतों के नंबर के साथ चलते हैं। अम्मन खलक समावाती वलर तवान जललकुम, टॉपिक है मज़ाहरे कुदरत का खालिक कौन है, यानी ये बताओ कि आसमान किसने पैदा किया, ज़मीन किसने बनाई, सूरज चांद का मालिक कौन है। ये ऐसे सोल सर्चिंग क्वेश्चंस हैं कि जिसके बाद इंसान हैरान हो जाता है कि वाकई जिसने बनाए हैं फिर हम उसी की बात तो मानेंगे। और इसी तरह से एक इंसान अल्लाह ताला की कुदरत के साथ अपने आप को जब बांधता है तो उसको यकीन हो जाता है इस बात का कि मेरा रब ही है जो बेहतरीन तरीके से कामों को बनाने वाला है। बल्कि आप देखेंगे कि अभी ये पूरा रुकू ही जो आगे आ रहा है ना, इसके अंदर सवाल है। आयत 63 से 65 लिखिए, मुहसिन हकीकी कौन है, अम्मे यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्री वल बहरी। फिर इसके बाद आयत नंबर 66 से 72, शिर्क का सबब इनकारे आखरत है, यानी शिर्क होता ही तब है जब आखरत के बारे में इंसान कुछ खुश फहमियों का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो लोग अल्लाह को तो मानना क्या है, उसकी बात नहीं मानना चाहते। लिख लें, लोग रब को मानते हैं, रब की नहीं मानते। लिहाजा हमें लोगों से क्या बात कहनी, क्या सुननी, किस तरीके से उनके दिलों में अल्लाह ताला की अजमत के एहसास के साथ उसकी बात को भी डालना है कि हमारा रब हमसे चाहता क्या है। फिर उसके बाद आगे है आयत नंबर 73 से 75, आखरत का साफ इनकार, वइन्ना रब्बका लज़ू फ़ज़लिन अलन नास, यानी वो फजल वाला रब है इसीलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा है। आयत 76 से 78, अल्लाह ताला की बेमिसाल अजमत, और आयत नंबर 79 से 81, अल्लाह के हबीब के लिए दिलजोई, यानी अल्लाह अपने प्यारे नबी की दिलजोई कर रहे हैं कि हमें पता है कि आपके दिल पे क्या गुजरती है, लेकिन आपको सब्र करना होगा। आयत 82 दाबतुल अर्ज कुर्बे क़यामत की अलामत है। फिर आयत 83 से 85, आयाते इलाही की तकजीब करने वालों का अंजाम, यानी जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते बिलाखिर फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर आयत नंबर 86, रात और दिन के आने जाने में निशानियां हैं। 87 से 88, रोज़े क़यामत की कैफियत। आयत 89 से 90, पुरअमन आखरत के लिए आज ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर लो। आप आयत 89 का ये पहला हिस्सा ही अपने पास अलग से लिख लें। ये है वो आयत जिसकी रोशनी में एक ईमान वाले को किसी भी नेकी की कम से कम 10 गुना जजा मिलती है। तो ये तोहफा है मेराज का, यानी 50 नमाजें कहीं, एंड पे 5 हो गई, अजर 50 का है। कुरान की आयत बता रही है, मन जा बिल हसनती फलहू खैरु मिन्हा, कि जो एक हसना लेकर आएगा उसके लिए उसी से बेहतर होगी। फिर आयत नंबर 91 से 93, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खसूसी हिदायत हैं। क्या? इन्नमा उमिरतु अन अअबुद रब्ब हाजिहिल बल्दतिल्लज़ी हर्रमहा। यानी यहाँ बात यह कि दूसरों को तो कहते हैं, आपको भी अल्लाह ने यही कहा था कि आप अपने रब की बंदगी कीजिए। क्या पता चला अभी तक की बात, यानी सूरत पूरी हुई इधर, के बेकरारी की हालत में की गई दुआओं को सुनने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। बस इस पे लिख लें। चलिए आपको एक छोटी सी एक्टिविटी कराऊं। लफ्ज़ लिखिए दर्द, अब इसको उल्टा पढ़ लें, इसको सीधा पढ़ लें, ये दर्द ही है, ऐसे ही है ना। चलिए अब इसका पहला दाल ख़त्म कर दें तो रद्द, आखिर वाला दाल ख़त्म कीजिए तो दर, उसका दर छोड़ दोगे तो दर बदर फिरोगे। हर दर्द आपको मुझे यही पैगाम देता है कि जो दर्द देता है ना उसी के दर पे सर झुकाओगे तो दर्द दूर होगा। हम सारी दुनिया को सुनाते हैं, नहीं सुनाते तो उसको नहीं सुनाते, और जब थक जाते, गला रुंध जाता, फिर कहते अच्छा फिर मैं सब्र ही करती हूँ। आप ना भी करें तब आपको सब्र करना पड़ेगा। फिर इसके बाद कुफार के रवैये पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्लियाँ मिली, और सारी सूरत का खुलासा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट। हम सबको बड़े शऊर के साथ जीना है। आज हमारे पास चॉइस है, कल चॉइस नहीं होगी, आपकी मर्जी है आप इस रास्ते पे चले ना चले, लेकिन जूं ही अपने गाड़ी उस रास्ते पे डाल दी तो फिर आप मंजिल पे पहुंचेंगे। जिसने जिस रास्ते पे गाड़ी डाली होगी उसी मंजिल पे पहुंचेगा। इसके बाद सूरत कसस, जो नाम से ही लग रहा है कि स्टोरी है, स्टोरीज कस्से किस्से, 28 सूरा है, 88 आयते हैं। इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम हजरत मूसा अलैहि सलाम का किस्सा है। पहली 6 आयात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तौसीम मीम, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन। अल्लाह ताला मजलूमों को गालिब करेगा, बोलिए इंशाल्लाह। कल भी अल्लाह के यही वादे थे और आज भी अल्लाह ताला के यही वादे हैं। आयत नंबर 7 बहुत प्यारी आयत है, आप नोट करें। जो माएँ हैं ना ख़ास तौर पे, वो अपने दिलों पे पत्थर रख कर ये स्टोरी सुनती हैं। जब ये कुरान की क्लासेस में इन आयत की तफसीर होती है ना तो लोग हिचकियों से रोते हैं, क्योंकि एक माँ का दर्द है। वउहैना इला उम्मी मूसा नरदी, उम्मे मूसा का किरदार। आयत नंबर 8 to 9, अल्लाह ने दुश्मन को मुहाफिज बना दिया। दुआ कीजिए अल्लाह हमारी औलादों के साथ भी यही करे। देखिए वो फिरौन जिसने मूसा के लिए कितने बच्चे मरवा दिए, वही मूसा के दरिया से निकलने का जरिया बना, तो शर्मे खैर है। आज अगर बहुत सारा बाहर शर भी है ना, तो दुआएं दिया करें अपनी नस्लों को। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला उनको भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसा सहारा दे देगा कि जिसके बाद फिर वो अल्लाह की हिफाजत में होंगे हमेशा। ये जो होते हैं ना, माँ की दुआ, जन्नत की हवा, और ये हमने बसों के पीछे तो ये बातें पढ़ी होती हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं पता होता ज़िंदगी में कि ये दुआएं कैसे रंग लाती हैं। फिर आयत नंबर 10 से 13, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश दुश्मन के हाथों में। आयत 14, इल्म और हिकमत की अता, नबूवत की तमहीद। यानी अल्लाह जिसको इल्म और हिकमत दे देता है ना, उसको कह लीजिए कि आगे जाकर अपने दौर में तो नबूवत के लिए चुना गया, आज कारे रिसालत के लिए चुना जाता है। अपने लिए दुआ किया करें। देखिए बैठ के लफ्ज़ नहीं बोलने होते, पढ़ना और पढ़ाना जो ये कापियाँ कलम लेकर उठने बैठने का नाम नहीं है। असल बात यह है कि आपको हिकमत आ जाए। गाड़ी चलानी आती हो, रोकनी ना आती हो, ब्रेक न लगानी आती हो, कहाँ तेज स्पीड से निकल जाना था वहां तेज निकलना ना आता हो, तो मुझे बताइए तो सही कि आप क्या समझे, किस तरीके से आप ऐसे वक्तों में फिर वो सारे कामों को करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से जरूरत है इस बात की कि एक इंसान अल्लाह से दुआ करे कि रब्बी हबली हुक्मन क्या मुझे हिकमत दे। फिर आयत 15 से 19, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ले खता होता है। देखिए नबुवत से पहले कत्ल तक हो गया तो क्या हुआ, अल्लाह बाद में जब चुनता है तो वो सब पिछले अगले गुनाह धो देता है। अल्लाह हमारी औलादों से भी अगर या हमसे भी कोई अगर गलती हो चुकी है तो उसको माफ़ कर दे। फिर आयत नंबर 20 से 22, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मदियन में पना लेना। अगर आप तरतीब से देख रहे हैं ना, तो शुरू में मूसा का बचपन था, फिर जवानी, फिर कत्ले खता हुआ, यहाँ तक मूसा का ऐसे ही जैसे नबी सल्लम का मक्की दौर, और उसके बाद मदनी दौर जब शुरू हो रहा है। ये पूरा जब हम तफसीर से करते हैं ना, तो सूरह कसस पढ़ते हुए हम सीरत के साथ भी हज़रत मूसा का तकाबुल करते हैं। तो अब ये हज़रत मूसा मदियन की तरफ चल पड़े, अल्लाह के नबी मदीना गए थे, थोड़ा सा ही फ़र्क है। आय 23 से 28, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की कबूलियत। क्या दुआ मांगी थी, किसी को याद है? यकीन करें, जब बंदे के लफ्ज़ ख़त्म हो जाए, सिर्फ हिचकियां रह जाएं, सिर्फ हिचकियां आ जाएं, सिर्फ जुबान नहीं बोली जा रही, बस बंदे के आंसू ही गिरते जाते हैं, आंसू गिरते जाते हैं। इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह क्या मांगू और क्या ना मांगू, रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए था, अल्लाह ने इस दुआ के बदले में सब कुछ अता कर दिया। कभी जिंदगी में ऐसे दौर आते हैं, याद रखिए, बंदा ऐसे उतार चढ़ाव में, हालात के फेर में आ जाता है कि समझ नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो ये दुआ हज़रत मूसा की बहुत ही प्यारी दुआ है। फिर आयत 29, अब मूसा की शादी हो गई, जिम्मेदार शौहर का किरदार है, और अब वापसी का सफ़र है मदियन से मिस्र की तरफ। आयत नंबर 30 से 32, अल्लाह ताला से शर्फ़े हम कलामी। ये है वो मुकाम जब नबुवत मिली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आप सीरत पढ़ते और पढ़ाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि 40 साल की उम्र में फिर आपको नबुवत मिलती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को इस मौके पे नबुवत मिली। सवाल लिख सकते हैं, आपको इसका सवाल बन सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को नबुवत कहाँ मिली? तो आप कह सकते हैं कि मदियन से मिस्र के रास्ते में वादिय तीह में। फिर आए 33 टू 35, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के लिए रिसालत का एजाज़। एक भाई की दुआ से दूसरे भाई को नबुवत मिल गई। कैसा बड़ा दिल था एक भाई का। हम कहते हैं जो हमें मिला वो सारे का सारा हमें ही मिल जाए, नहीं, अल्लाह ने बड़े लोगों के दिल खोले होते हैं और अल्लाह फिर उनसे अपना काम भी लेता है। आय 36 से 42, आले फिरौन की हक दुश्मनी। अब देख लीजिए, यहाँ से फिरौन शुरू है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो नबुवत मिली, तो अब उसका तस्करा हो रहा है। फिर इसके बाद अगली आयत देखिए, 43, तौरात के महासिन, तौरात की खूबियां। वलकद आतैना मूसल किताब मिन बादी मा अखलकनल कुरून। अपने दौर में तौरात में भी बहुत सारी बातें थी जो दुरुस्त थी। ये तो आज हमें पता नहीं है ना कि क्या अल्लाह की है और क्या बंदों की है। देखिए जैम की शीशी नीचे गिरे और टूट जाए तो कुछ किरचियां गिर जाती है ना उसमें, तो क्या आप उसको बचा बचा के जैम खा लेते हैं? आप कहते पता नहीं कहीं शीशा होगा, सारी फेंक दो। आज तौरात और इंजील का ये हाल है, आज भी उसमें अल्लाह का कलाम मौजूद है पर आपको पता ही नहीं। हाँ ये कुरान है, मुहैमिनन, सूरत मैदा में हम पढ़ कर आए हैं, जैसे मुर्गी अंडों के ऊपर बैठती है और पहरा देती है ना अपने बच्चों का, तो कुरान ने अल्लाह के कलाम की जो बातें थी तौरात और इंजील में उसको चुन के अलग कर दिया। ये बड़ी बात है, यानी जब आप कुरान पढ़ते हैं ना, आप बाइबल भी पढ़ लेते हैं। तो रात इंजील मुराद है, बाइबल तो ऐसे ही आज लोगों ने जमा किया ना, ये नाम अल्लाह ने ये नाम नहीं दिया था। तो इन आयात में तौरात की खूबियां बयान हो रही हैं। ये है खुला दिल होना। अब देखिए अच्छी बात जिसकी भी है ले लो, कुरान ने आकर तौरात और इंजील को कंडेम तो नहीं किया। बार बार आप पढ़ते हैं मुसद्दिक लिमा बैना यदै, ये कुरान तो उस किताब की या उन किताबों की तस्दीक करता है जो उनके हाथों में थी। तो यही अंदाज आज भी दीन के नाम पे होना चाहिए। फिर आयत 44 से 46, गुज़श्ता वाक़यात का बयान, रसालते मुहम्मदी का सबूत। यानी वो शख्स जो किसी मस्जिद नहीं गया, मदरसे नहीं गया, जिसकी माँ ने उसकी तरबियत नहीं की, वो पिछली सारी कहानियाँ इस तरह तरतीब से सुना रहा है, बता रहा है, तो यकीनन उसके पास कोई खूबी तो होगी ना। फिर उसके बाद आयत नंबर 47 से 50, मुशरिकीने मक्का के बेबुनियाद उजर। अब सूरत एंड होने की तरफ आ रही है, ये सारी स्टोरीज अल्लाह ताला अपने नबी को इसलिए सुना रहे थे कि जो लोग उनके साथ ऐसा मामला कर रहे हैं वो अच्छी तरह समझ जाएं कि जैसे अल्लाह ने पिछले नबियों की मदद की, वो इस नबी की भी मदद करेगा। आयत 51 से 55 पहले किताब के लिए तहसीन और बशारत, जैसे तौरात की खूबियां बयान की, ऐसे उस दौर के जो नेक लोग थे उनकी भी अल्लाह सुबहाना ताला ने खूबियां बयान कर दी। और आयत नंबर 55, मोमिन का मिजाज क्या होता है, इस जुमले को लिख लें, ये अलग से लिख लें, वह इज़ा समीउल्लग्व, और जब कभी वो लग बातें सुनते हैं, ताने, इल्ज़ाम, बेहुदा बातें, वल्गर बातें, नेगेटिव टॉक, आरदवन हो, मुंह फिर जाते हैं, वो बैठ नहीं जाते, टिक के ज़रा देखें तो सही क्या हो रहा है। वक़ालू लना आमालुना, और कहते हैं अच्छा हमारे अमाल हमारे लिए, तुम्हारे और तुम्हारे लिए, यानी मोमिन का मिजाज बहसों में पड़ने वाला नहीं होता। मोमिन कभी भी किसी के लिए एक हड्डी की तरह नहीं चुपता, बल्कि वो अपनी राह ले लेता है और दूसरों के लिए दुआ करता है। फिर आयत 56, इन नकला तहदी मन अहबब तबला किन अल्लाह यहदी मन यशा, ये भी जुमला लिख लें। इतनी बड़ी हकीकत है, पूरी दुनिया में हिदायत का सूरज बन के जो नबी आया, बद्र मुनीर, सिराज मुनीर, सूरत अल अहज़ाब में तो अल्लाह ने दायन इल्लाह कहा उनको, नसीरन कहा, बशीरन कहा, सिराज मुनीर कहा, लेकिन हिदायत नबी नहीं दे सकते, देते तो सबसे पहले अपने चचाओं को दे लेते। इसलिए फरमाया किसी को हिदायत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। आयत 57, अल्लाह का हुक्म खुशी से मानना है। आई विश के टाइम हो मेरे पास भी और आपके पास, मैं आपको इसे एक एक आयत में सिर्फ दो दो चार चार जुमले सुना के बता दूं कि यह आयत क्या है। इतना हिस्सा जितना को लिखा है, इसको देखकर आपको क्या समझ आ रहा है? नए बच्चों को कुछ नहीं समझ आएगा, मैं आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रही, जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं उनसे कोई बात नहीं, लेकिन क्या यह आयत समझ आ रही है? ये आज हमारे इस माशरे, इंडिया पाकिस्तान इंडो पाक देसी कल्चर का मारूफ जुमला है। वकालू, और उन्होंने कहा, इन नतबिया, अगर हम पैरवी करेंगे खुदा हिदायत की माँ का तेरे साथ, ऐ नबी अगर हम तेरी बातों पे चल पड़े, नुतखत्तफ मिन अर्दिना, ये लोग क्या कहेंगे, हम तो उचके जाएंगे अपनी ज़मीनों में से, हमारा ख़ानदान बिरादरी हमें छोड़ देगा, हमारी दोस्तें क्या कहेंगी, क्या जी हमारा मसला नहीं? तो यह याद करिएगा, जब कभी आपको लगे आप अल्लाह की मान रहे हैं, लोग आपसे नाराज़ हो रहे हैं, तो याद सुनिएगा, ये तो इस रास्ते के फूल हैं, ये अल्लाह के रास्ते के वो फूल हैं जो गुलदस्ता बनाकर अल्लाह पेश करता है, कि जब तुम मेरे रास्ते में चलोगे लोग तुमसे नाराज़ होंगे, दोस्त दुश्मन बनने लगते हैं, दुश्मन दोस्त बनने लगते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं इनको बता दो क्या, आयत 58 to 59, बतर की खराबी, और बतर क्या होता है, लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स एंड फ्लॉन्ट करना। आप इसका 2010 का ये पारा सुन लें, बतर पे था, 10वां पारा भी था, यानी हमने एक साल का तस्किया नफ्स का मौजू रखा था, पूरा एक पारा बतर पे, क्या होता है, उसके इफेक्ट्स, उसके इनसाइड आउटसाइड, और आज दीन दुनिया बुक है हमारे पास, आप खोलिए बाद में, यूट्यूब पे उसका लिंक है जी। बतर ये कि बड़े कहते थे कि चादर देकर पांव फैलाओ, बतर कहते हैं पहले पांव पसारो फिर चादर मांग लेंगे उधार की, घर उधार का, गाड़ी उधार की, सेलफोन उधार का, फर्नीचर उधार का, थोड़ी सी डाउन पेमेंट दे के अपने नाम की तख्तियां लगाते हैं, ये है बतर। इससे भी ज़्यादा बोलूँ मेरा ख्याल है ना बोलूँ, आज पूरा कल्चर बतर का है। कुरान कहता है वकम अहलकना मिन क़रियतिन बतरत मईशतहा, कितनी ही बस्तियां गुजर गईं जिनको हमने हलाक किया क्योंकि वो अपनी मईशत पे इतराती थी। आज नहीं इतराते, कोई हमसा हो तो सामने आए, मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, कोई है हमसे ज़्यादा कुव्वत में, कोई है हमसे ज़्यादा ताकत में, यानी आज बढ़ के नहीं लोग मारते। कल यकीन करें एक मुल्क का नाम भी ले सकती हूँ, ख़बरों में आया हुआ है, नीदरलैंड के जो मेन उनका प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर, उसकी सिर्फ 3 मिनट की आप स्पीच सुन लें, लास्ट वीक आई है ऑन एयर। यकीन करें कि अगर बंदे के अंदर ज़रा सा भी खून हो ना, मोहम्मदी खून, तो बंदा कहता है कि मैं जूते की नोक पे ऐसी जगह, वो खुद कह रहे हैं हमारे मुल्क से निकल जाए अगर आपको अपना इस्लाम चाहिए तो। एक एक चीज मुंह पे, खबरों में आया हुआ है, आपको नहीं पहुंचा होगा तो कहीं ना कहीं से सुन लेंगे आप ही, वो नाम लेके कहते हैं अगर इन्होंने इस्लाम रखना है तो जाए अपने मुल्कों में। ये बतर है, ये अकड़ है, एक एक लफ्ज में फिरौनियत, हालांकि देखने में इतने मासूम, और इन मुल्कों में जाएं तो यकीन करें पता भी नहीं चलता, इतने स्वीट लोग हैं यहाँ के, लेकिन अंदर वो ग्रज है ना, उनके अंदर एक ग्रज है, इस्लाम की दुश्मनी है, और भी बहुत कुछ था उसमें। तो याद रखिए अल्लाह को बड़ाई नहीं पसंद। आयत 60 से 62, दुनिया के फ़ायदे आरजी और घटिया हैं, इसी के पीछे मरते हैं, वही कूड़े का ढेर याद कीजिए कि ये है आपकी दुनिया। अपने उतरे हुए कभी कपड़े पसीना उसका सूंघा करें, कभी सुबह उठ के ब्रश किए बगैर जरा सा अपना हाथ ऐसे मुंह के आगे रखे, ऐसे करें तो मेरे हाल आपको उबकाइयाँ आने लगेंगी। आज हम दुनिया में जिन लोगों के सहर का शिकार होते हैं ना, तो अगर वो एक दिन शावर ना लें तो उनके साथ बैठा नहीं जा सकता, मुंह में से इतनी बू आए कि आप उनके साथ खाना ना खा सके। इतना इंसान अंदर से देखिए कितनी गंदगी की पोटली लेके फिरता है, सबसे ज्यादा तो अपना ट्रैश बंदा खुद उठा के फिर रहा होता है, उसको कहाँ अकड़ सोचती है। इसलिए फरमाए इस दुनिया के पीछे ना भागो, आय 63-66, रोजे कयामत मुशरिकीन की बेबसी, 67-70, तौबा के बाद ईमान लाना और आमाले सालिह करना, आयत 71-73, सिलसिलाए रोज़ व शब अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। ये है वो आयत, इसका नंबर नोट कर लें बेशक, कि अल्लाह कहते हैं अगर कुल आरई तुम इन जाकुमल सरमदा, क्या गौर किया तुमने, अगर अल्लाह तुम पे हमेशा की रात कर दे, है कोई जो तुम्हें दिन दे दे। ये तो नॉर्वे वाले पढ़ते हैं आए तो कहते हैं अल्लाह वाकई कोई नहीं कर सकता, इतनी तरक्की के बावजूद भी सर्दियों की रातें वो छोटी नहीं कर सके और गर्मियों की रातों को खींच नहीं सके। काले पर्दे डाल लेते हैं कि अब सोना तो है, लेकिन वो सूरज को छुपा नहीं सकते। अल्लाह ने ये 71-73 में कह दिया है कि तुम तो रात दिन को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, तुम्हें जिंदगी की खुशी और गमों की रात के ऊपर क्या इख्तियार होगा। फिर आयत नंबर 74-75, खुद साख्ता माबूद काम ना आएंगे। आगे से कारून का किस्सा है, 76-77, कारून को अहले खैर की नसीहत। कौन था कारून? सिंबल ऑफ दौलत, मनी, मिलियनेरियन, बिलियनेरियन। अल्लाह ताला कहते हैं कि उसको जो मिला था मेरे फजल से मिला, लेकिन उसने क्या कहा, आयत 78, अल्लाह के फजल से मिलता है जो मिलता है। ये जुमला देख लीजिए, इन्ना मऊती तू अला इल्मे निंदी, जी मेहनत करते हैं, कमाया है, बच्चों को पढ़ाया है, बड़ी मेहनत कराई है, बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, हम भी ये कहते हैं। ये फिरौन का जुमला था, अपने ऊपर ले रहा, अल्लाह को नहीं कह रहा कि अल्लाह आपका शुक्रिया आपने मेहनत को कुछ रंग लगा दिए, इन्ना मऊती तू अला इल्मे, जी इल्म लिया है, अपनी मेहनत की है, कोई मजाक थोड़ी है। अल्लाह को ये जुमला अच्छा ना लगा। आयत 79-82, अल्लाह ताला का इनाम किसे मिलेगा, ये पूरा वाक्य है, इसको अलग लिख लें। इस पे एक हमने अलग से लेक्चर भी कारून के नाम पे किया हुआ है, जस्ट कारून, सिंबल ऑफ दौलत और मनी, तो उसी का तस्करा इन आयात में है कि जब खूब बन ठन के निकलता था तो लोग उसको कैसे आइडियलाइज करते थे। आयत नंबर 83, आखिरत का घर आजजी करने वालों के लिए है। ये 10 दफ़ा लिखी आयत, तिलका दारुल आखिरतु नजलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलूवा। आखिरत की इज्जत उसको मिलेगी जो दुनिया में बड़ा नहीं बनता। आजजी के साथ जीना, चाहे करोड़ों हो आपके घर में, लाखों हो, अल्लाह ने आपको सर से पांव तक सोने चांदी में तोला हुआ, दिल गरीब रखिए, दिल की गुर्बत होनी चाहिए। आयत 84, नेकी और बदी के नतीजे का फर्क, मन जा बिल हसनति फलहु खैरु मिनहा, जो भलाई लेकर आएगा, हसना लेकर आएगा, उसको उससे भी अच्छा मिलेगा, और जो इसका ऑपोजिट करेगा वो भी होगा। फिर सूरत के ततिमे की तरफ चल रहे हैं, आयत 85, खिदमत कुरान का आला सिला। यकीन करें जैसे बंदा मिर्चों वाली आइसक्रीम खा रहा होता है और उसको अपने याद आ रहे होते हैं ना, आपके ये कौन सी होती है, मिलती है, इधर भी मिलती है और एटलांटा में तो बहुत ही मिलती है। उसको खाने के दौरान बंदा दूसरों को बता ही नहीं सकता कितनी मजे की चीज है। मेरा इस वक्त पढ़ाने के दौरान ये हाल हो रहा था, मेरा दिल करता है मैं अपना दिल खोल कर आपके अंदर इस आयत की डिटेल्स डाल दूं, तो अल्लाह ताला कहते हैं बातिल के साथ समझौता नहीं हो सकता, नो 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 नो, ये असिमिलेशन नहीं हो सकते। कभी आग और पानी को इकट्ठा करेंगे, या आग बुझ जाएगी या पानी पानी नहीं रहेगा। हम ये जो कुफर और इस्लाम को जमा करते हैं ना, ये आज भी गलत है, दो कौमी नजरिए की बुनियाद भी यही असूल था। आज हम मुसलमान उस दौर में गुजर गए कि हम कुफर के सामने झुकते हैं, वी लिक द बूट दैट किक्स अस, कहते नहीं इनको खुश रखो, अल्लाह की खैर है उसको मना लेंगे। आ रहा है रमजान, 27वीं रात को मना लेंगे, अल्लाह को एक उमरा करके आएंगे, अल्लाह की क्या बात है। इनको छोटे छोटे खुदाओं को पूजो जो दुनिया में हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, अल्लाह हमारी आंखें खोल दे। तो क्या सीखा हमने इस पूरी सूरत में, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। फिरौन ने कितने बच्चे मार दिए, मूसा की माँ ने बच्चे को दरिया में डाल दिया, लेकिन अल्लाह ने मूसा को बचा लिया। कुदरत का मंजर देखिए कि दुश्मन के घर में फिरौन की जेरे निगरानी मूसा की परवरिश हो रही है, और अल्लाह ने मूसा अलैहि सलाम को इल्म और हिकमत से भर दिया, और मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से रहनुमाई तलब की। फिर तौहीद पर कायम रहने वाली कौमों का तذکرہ हमने देखा इस सूरत में, और फिर मूसा अलैहि सलाम को जो मौजज़ात और नबूवत मिले थे, और आगे अब सूरत अलनकबूत आएगी जिसमें हम देखेंगे मकड़ी के जाले, गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले। 44 आयात हैं इसमें सूरत अनकबूत, 29 नंबर की सूरत। अनकबूत क्या है? जाले, घर में जाला नहीं लगता, उसी से है ये लफ्ज़। अनकबूत क्या है हम ही देखेंगे अभी। बड़ी खूबसूरत सूरत है, इसकी शुरू की आयतें तो दिल चाहता है कि इसमें बंदा डूब जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन्नासु अय्युत्रकु अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये गुमान किया है कि सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी, जब तक कलमे के मुताबिक जिंदगी बसर न की जाए। आप सिर्फ इतने लफ्ज़ों को देख लेना, वो अलामा इकबाल ने भी कहा था ना कि चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम, मैं खुद को मुसलमान कहते हुए लरजता हूँ। के दाना मुश्किलाते ला इला, कि मैं जानता हूँ कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद मुश्किलात क्या आती हैं। यही बात इधर है। क्या लोगों ने गुमान किया कि वैसे ही छोड़ दिए जाएंगे कि उन्होंने कहा हम ईमान लाए और वो आजमाए ना जाएंगे? हालांकि आजमाया तो उन लोगों को जो उनसे पहले थे, यहाँ तक कि जान लिया अल्लाह ने उन लोगों को जिन्होंने सच कहा, और अलबत्ता जान लिया झूठों को। अब आप देखिए ये कुरान जब आप ऐसे अरबी खोल कर उर्दू में पढ़ें, ये बंदगी का वो रंग, ये वो खूबसूरती, इस पे जिंदगी खपा दें आप। जो जिंदगी के साल हैं, मैंने बस तर्जमा सीखना है, ना तफसीर सीखे, ना कुछ पढ़े, ना कुछ, सिर्फ तर्जमा याद कर लें। कम अज कम आपकी नमाजें तो जिंदा हों, कम अज कम आपकी तरावियों में तो आपको लुत्फ आए। इमाम साहब तर्जमा याद कर करके रो रहे होते हैं, और पिछले थकन के मारे रो रहे होते हैं कि कब पारा खत्म होगा, समझ जो नहीं आता। हाय कब खत, हाय फिर अगली सूरत शुरू कर ली, हाय ये डेढ़ पारा पढ़ रहे हैं, क्या भाग रहे हैं, क्या दौड़ रहे हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता। बहरहाल तो पहली पांच आयतें, टॉपिक क्या है? सिर्फ कलमा पढ़ लेने से जन्नत नहीं मिलेगी। 6 to 7, तरबियत के लिए नरमी और सख्ती दोनों ज़रूरी है। अपने बच्चों को एक आंख से घूरें और दूसरी आंख से मोहब्बत करें, ये दोनों ज़रूरी होती हैं। तवे पे डालने से पहले रोटी को बेलते हैं, फिर तत्ते तत्ते गरम गरम तवे पे डालकर फिर उसको सेकते हैं, फिर ही खाने के काबिल होती है। औलादें नहीं घड़ती जब तक उनको सख्त हाथ नहीं लगते। फिर आयत 8, शिरकिया बात माँ बाप की भी नहीं माननी। आयत 9 to 11, अल्लाह जाहिर फरमा देगा कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है। 12 to 13, नौजवानों के लिए काफिर बुजुर्गों का फरेब। ये है जी उन बूढ़े माँ बाप, बूढ़े तो नहीं, माफ़ कीजिए माजरत से आप सर, मेरे पास जो आते हैं वो तो माँ बाप के दर्जे पे, ये वो माँ बाप हैं जो अपनी दीन पे आई हुई औलादों को दीन से रोकते हैं, और क्या कहते हैं कि तुम हमारी मान लो, कल हम तुम्हारे बारे में वहां जाके झगड़ लेंगे। बच्चा कहता है मैंने शादी सिंपलिसिटी से करनी, आज सादगी से करनी, माँ बाप तो ये कैसे हो सकता है। जवान बच्चा कहता है मैंने दाढ़ी रखनी, वो कहते क्या बेटी नकाब करती है, माँ कहते तुझे रिश्ता क्या देगा। ये आयते हैं अल्लाह के नबी के दौर में ज्यादा नौजवानों ने आपकी दावत मानी थी, तो वो जब ईमान की हलावत लेकर चलते थे तो माँ बाप उनके पाँव रोकते थे। अल्लाह ने शायद में बता दिया कि ये बड़े तो हैं लेकिन बुजुर्ग नहीं है, अपने बुजुर्गों की बातों में मत आना। फिर आयत नंबर 14 से 15, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस्तकामत। 16 to 18, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत। और आयत 19 से 23, तमाम इंसानों के लिए दर्स इबरत है। क्या पता चला? सच्चे और झूठे ईमान वालों की आजमाइश होके रहती है, और फिर कुफार की खुशफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। शिर्क से बेजारी करनी है, चाहे माँ बाप भी मजबूर करें शिर्क करने पे। और फिर इसके बाद कौमों के किस्से, इन्हीं में से आगे 24 से 27, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह के इनामात। क्या किया था उन्होंने? कत्ल कर दो, आग में डाल दो, और अल्लाह ने क्या किया? वकुलना या नारुकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। हमने कहा कि इसहाक को कि तू अब ठंडी भी हो जा और सलामती वाली हो, ठंडी से मतलब फ्रीजर वाली ठंडी नहीं, मॉडरेट रूम टेम्परेचर पे रह कि मेरे इब्राहिम को ना गर्मी लगे ना सर्दी लगे। और कहने वाले कहते हैं, रिवायतें भी मिलती हैं कि हज़रत इब्राहिम कहते हैं वो दिन जो मेरे आग में गुजरे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, सुबह शाम मुझे रब का सलाम आता था। इन लजीना कालू रब्बुनल्लाह सुमस्तकामू ततनज़्ज़ल अलैहिम अलमलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू वाबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया। कभी अल्लाह के रास्ते में आजमाए तो जाए, फिर देखें आप क्या मज़ा आता है उसमें। शर्त है कि इस्तकामत, सारी दुनिया एक तरफ और अल्लाह की ज़ात अल्लाह की बात एक तरफ। फिर इसके बाद आयत नंबर 28 से 35 कौम लूत की खबासत। आप देख रहे हैं तकरीबन हर पारे में कौम लूत का किस्सा है, हर पारे में। तो अगर हमारे बच्चों ने कुरान का तर्जमा भी पढ़ा होगा ना, तो कम से कम उनको वो खूबसूरत से एक कह लीजिए कि वनीर के अंदर जो गंदगी छुपा के लोग रखते हैं उसकी असल तो पता लग जाएगी ना। गोल्डन पेपर लगा दें तो चाहे पीछे जो मर्जी छुपा दें। आज के नज़रियात कुछ इसी किस्म के हैं। फिर आए 36 से 39 मुजरिम कौम की इबरतनाक मिसालें, और आयत नंबर 40 अजाब की 4 सूरतें, और इनमें भी बड़ी डिटेल है लेकिन इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। और आखिर में फिर आयत 41 से 44, ये है वो मिसाल जिसकी वजह से सूरत का नाम सूरत अलनकबूत है। टॉपिक लिखिए गैर अल्लाह के सहारे मकड़ी के जाले। हर कब्र पे जाके लिख दो, हर दरगाह पे लिख दो, हर मज़ार पे लिख दो, हर मंदिर पे जाके लिख दो कि जिनको तुम पुकार रहे हो वो तो एक मक्खी का पर नहीं पैदा कर सकते, तुम्हें क्या देंगे। तो बहरहाल हमने क्या सीखा इस पूरे पारे में, अल्हम्दुलिल्लाह पारा पूरा हुआ कि रिश्ते नाते नहीं आमाल काम आएंगे, अल्लाह दुश्मनों से भी अपने काम करवा लेता है, अल्लाह की रहमत से मायूसी कुफर है, और नेकूकारों को यानी नेक काम करने वालों को अजीम अजर मिलता है। हमने क्या करना है, मसनून दुआओं का एहतमाम करना है, बेलौस होकर दूसरों की मदद करनी है, और नेकी के मौके मिलें तो इनसे फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। सुबहाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ती अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।